वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारियम यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जयो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमाओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೆ ವಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್, ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಚ್ಛಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೈ ಕಿ ಹರ್ ಸೋಮವಾರ ಕೆ ದಿನ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಲೀಲಾಓ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸುನ್ತೇ ಹೈ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಈ ಗ್ರಂಥ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ. ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬತಾತೆ ಹೈ, ಭವ ಸಿಂಧು ತಾರಿ ಬಾರಿ ಆಚೆ ಜಾರ ಚಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕರಿ ಸುನಿ ಸೇಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರ. ಭವ ಸಿಂಧು ತಾರಿ ಬಾರೆ, ಜಿಸ್ಕೋ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ ಭವಸಾಗರ್ ಪಾರ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಲೀಲಾಓ ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಏಹಿ ಅಮೃತೇರ ಸಿಂಧು ಕರ್ಣ ಮನ ತೃಪ್ತ ಕರೆ ಜಾರ ಏಕ ಬಿಂದು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಯೇ ಅಮೃತ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಭಿ ಕಾನ್ ಔರ್ ಮನ್ ಕೋ ಪೂರ್ಣತಯಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ತೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾ ಕೆ ದಸವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 131 ಸೇ ಶುರೂ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಪ್ರಸಂಗ ಏಸಾ ಹೈ ಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಪ್ನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಯಾತ್ರಾ ಪೂರಿ ಕರ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಆ ಗಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಮೇ ಸಬ್ ಭಕ್ತ ಮಿಲ್ ರಹೇ ಉನ್ಸೆ ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಬ್ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ ಔರ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಗೋವಿಂದ ವಹಾಂ ಪೆ ಆಯೇ. ಅಭಿ ತಕ್ ವೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಸೇವಕ ಬನೆ ನಹೀ ಥೇ ಅಫಿಷಿಯಲಿ, ಗೋವಿಂದ ನೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಶುರುವಾತ್ ಕರೆಂಗೆ. ಹೇನ ಕಾಲೇ ಗೋವಿಂದೇರ ಹೈಲ ಆಗಮನ ದಂಡವತ ಕರಿ ಕಹೆ ವಿನಯ ವಚನ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಗೋವಿಂದ ನೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಿಯಾ, ಉನ್ನೆ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ವಿನೀತ್ ಹೋಕರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಹಾ. ತೋ ಹಮ್ ಎಟಿಕೇಟ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸೆ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ, ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಕೋಯಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೂಂ, ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ಕೆ ಫಿರ್ ನಮ್ರತಾ ಸೇ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಕರ್ನಾ. ತೋ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇವಯ, ಸೇವಾ ಭಾವನಾ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ಬಾದ್ ಮೇ ಗೋವಿಂದ ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಹುತ್ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕ ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಆಗೆ ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ. ಈಶ್ವರ ಪುರಿ ರಭೃತ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಮೋರ ನಾಮ ಪುರಿ ಗೋಸಾಯಿ ರ ಆಜ್ಞಾ ಆಯ್ನು ತೋಮಾರ ಸ್ಥಾನ. ಉಸ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಯಾ, ಮೇರಾ ನಾಮ ಹೈ ಗೋವಿಂದ ಔರ್ ಮೇ ಈಶ್ವರ ಪುರಿ ಕಾ ಸೇವಕ ಹೂ, ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಗುರು ಕೆ ಆಜ್ಞಾ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯಾ ಹೂ. ಕೆ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಪುರಿ ಹೈ, ಈಶ್ವರ ಪುರಿ ಕೆ ಗುರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹೈ ಔರ್ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೆ ಗುರು ಕೆ ಗುರು ಕೆ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಮೇ ಶಿಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಜಿ ಹೈ, ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಜಿ ಕೆ ಗುರು ನಾರದ ಮುನಿ ಹೈ, ನಾರದ ಮುನಿ ಕೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹೈ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೆ ಗುರು ರಾಧಿಕಾ ರಮಣ್ ಜಿ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಪರಂಪರಾ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಹೈ, ಕಿ ವೋ ಯೇ ನಹೀ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಕಿ ಮೇರಾ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹೈ ಮೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೂ, ಮೇರಾ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹೈ ಮೇ ಇಸ್ ಜಾತಿ ಕಾ ಹೂ. ವೋ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಮೇ ಈಶ್ವರಪುರಿ ಕಾ ಸೇವಕ ಹೂ. ತೋ ಯೇ ಏಕ ಸಚ್ಚೆ ಶಿಷ್ಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೋತಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಗುರು ಕಾ ಸೇವಕ ಮಾನತಾ ಹೈ. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವ ದರ್ಶಿನ. ಜೆ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಕಿ ಸದ್ಗುರು ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾವು ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ, ಸೇವಾ ಕರೋ ಔರ್ ಬಡೇ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಛ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಗೋವಿಂದ ಇಸ್ ಭಾವ ಸೇ ಆಯೇ ಕಿ ಮೇ ಈಶ್ವರಪುರಿ ಕಾ ಸೇವಕ ಹೂ ಔರ್ ಮೇನೆ ಗುರು ಕೆ ಆಜ್ಞಾ ಸೇ ಆಯಾ ಹೂ. ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾ ಥಿ? ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಲೆ ಗೋಸಾಯಿ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಲ ಮೋರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿಕಟ ರಹಿ ಸೇವಹಿ ಸೇವಿ ಹಿ ತಹಾರೇ. ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಲೇ, ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೋಲ್ತೇ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರೀರ ಛೋಡನೆ ವಾಲಾ ಹೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಕೆ ಲಿಯೇ, तो लिखा गया जब मेरे गुरु महाराज सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए धरती छोड़ के जा रहे थे, जाते समय मेरे गुरु महाराज श्री ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ और उनकी सेवा करो। इंटरेस्टिंग है, ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी का क्या गुण था कि उनको भगवान ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। और भी कई बड़े बड़े भक्त थे उस समय, माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य थे जो उस समय धरती पे थे, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ईश्वरपुरी, श्रीरंगपुरी। लेकिन क्या विशेषता थी इसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया? हाँ, जब माधवेंद्रपुरी अपने आखिरी समय में थे, जब वो बहुत जीर्ण शरीर हो गया था, यहाँ तक कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, तो ईश्वरपुरी उनकी बहुत नम्र सेवा कर रहे थे। यहाँ तक कि मल मूत्र विसर्जन के लिए भी उनको कष्ट उठाने जाता था तो अपने हाथों से सब सफाई करवाते थे, करते थे बड़े खुशी के साथ कि ये मेरे गुरु महाराज की सेवा है। तो गुरु की सेवा जो है वो इस भाव से करना चाहिए। कई बार गुरु सेवा एक प्रेस्टीज हो जाता है कि मैं गुरु महाराज का पर्सनल सर्वेंट हूँ ना, किसी को मिलना हो तो मेरे द्वारा मिल सकते हैं, आई एम द वन, द ओनली वन। तो पर्सनल सर्विस करने में अभिमान हो जाता है कई बार व्यक्ति को, लेकिन वास्तव में पर्सनल सर्विस इस भाव से करनी चाहिए कि मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि वो मेरे को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु और ड्यूटीज जो है बहुत, वो अग्नि के समान है, बहुत पास में जाने से शुद्धिकरण भी हो सकता है और जल भी सकते हैं। कि अगर गुरु के बहुत पास रहता है, ड्यूटीज के बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर अपराध की भाव आ जाती है तो पतन भी हो सकता है। बहुत केयरफुल रहना चाहिए। साक्षात हरि द्वेना समस्त शास्त्र, गुरु भगवान के समान पूज्य नहीं है, इसलिए उनका उतना आदर किया जाता है। तो कहानी इस प्रकार से है कि जब ईश्वरपुरी ने जब माधवेंद्रपुरी शरीर त्यागने वाले थे तो ईश्वरपुरी उनको कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते थे, क्योंकि आखिरी समय में बहुत ज़रूरत होती है। अधिकतर समय आखिरी समय आप जानते हैं, चाहे सीनियर डिवोटी हो, जूनियर हो, इवन शुद्ध भक्त भी हो, तभी शरीर तो बहुत तकलीफ देता है, समय जीर्ण अवस्था में होता है और कभी कभी तो ठीक से कार्य भी नहीं हो सकता, याद भी नहीं रहता, कई लोग को ऐसी बीमारी होती है। इसलिए महान संत महाराज कुलशेखर, उन्होंने ग्रंथ लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र, उसमें बताते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंजरंतम अद्यैव मे विशतमान सराज हंस प्राण प्रणाय समये कफवात पित्ते कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते। उन्हें कृष्ण कि मेरा मन जो है वो आपके चरणों में प्रवेश करे जैसे एक राजहंस कमल के डंडी में प्रवेश करता है, इस समय मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, ये मेरी सफलता होगी। क्योंकि प्राण प्रणय समय, जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, कफवात पित्तैर, पूरा शरीर कफवात तब डिस्टर्ब रहता है और समय भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो जाता है। अभी अभी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं भगवान में मन लगाना चाहता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी भी चैंटिंग हरे कृष्णा, इस किताब में प्रभुपाद जी के कोटेशंस हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को अभी से तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली नाम जप करके, कि मृत्यु जो है फाइनल एग्जाम है और अभी जो चल रहा है प्रिपरेटरी लीव है, अभी तैयारी का समय चल रहा है और एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और मुरली प्रभु सेम कॉलेज में गलती से चले गए थे तो प्रभु का तो सौभाग्य था कि वहीं पर उनको इस्कॉन से संपर्क में आए, नहीं अच्छा पहले भी कनेक्टेड थे, हम सब कनेक्टेड थे पूरे जन्म में। यस, एग्जाम का डेट, हमारे BHU बहुत अच्छा कॉलेज था, उसमें एक थी, कई बार हम टीचर के पास जाते और बोलते कि अभी पढ़ाई नहीं हुई है तो बोलते ठीक है अगले रविवार अगले सोमवार कर देंगे। आपके समय होता था ऐसे? नहीं, आप एडवांस वर्जन से हैं, तो हमारे समय ऐसा होता था कई बार हम टीचर को प्रेम से बोलते थे कि अभी तैयारी नहीं हुई है, तो चलो कोई नहीं, ये सोमवार नहीं, एक हफ्ते बाद कर लेंगे एग्जाम। तो लेकिन ऐसे यमराज को ऐसा बोला नहीं जा सकता, नहीं करेक्ट प्रभु जी, यमराज को बोल सकते हैं ऐसे? यस, नहीं मैं तो जात मैं उधर नहीं, वो मेरा प्रीचिंग एरिया नहीं है वो। मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं। आप प्रीचिंग के लिए एक्चुअली एक बार प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे कि किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि आप अगला प्रीचिंग एरिया कहाँ जाना चाहेंगे शरीर छोड़ने के बाद, तो प्रभुपाद जी बोले आई वॉन्ट टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स, मैं नरक में जाना चाहता हूँ। नरक में भी प्रीचिंग हो सकता है, नहीं एक हरे कृष्णा मंत्र लो और एक थोड़ा सा कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा सा प्रसाद होना चाहिए, पता नहीं वहाँ कैसा प्रसाद होता है, तो वहाँ एक बेस खोल सकते हैं मुरली प्रभु के गाइडेंस में ना, इस्कॉन कुंभी पाक है ना, इस्कॉन महारौरव है ना, उसके लिए कोऑर्डिनेटर और यू नो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत कम लोग आना चाहेंगे। बट एक्चुअली दिल्ली बम्बई और नरक में ज़्यादा अंतर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जानते हैं एक्चुअली फॉग का लेवल देखें, यहाँ पे पोल्यूशन, हरे कृष्ण। दिल्ली में रहना ही मतलब बिना सिगरेट पिए उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। कितना अच्छा है अज्ञात दुष्कृति। लेकिन अगर आप दिल्ली में मंदिर में आ रहे हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंदिर में जा रहे हैं उनके लिए ऑल दिस थिंग्स आर इमटीरियल। एक साधु के लिए क्या है, वो प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं ना कि एक साधु जा रहे होते हैं तो एक ब्रह्मचारी को देखते हैं, तो क्या आशीर्वाद देते हैं ब्रह्मचारी को, मुनि पुत्र माँ जीव, मतलब जल्दी मर जाओ, ये आशीर्वाद हरे कृष्ण। फिर और एक व्यक्ति को देखते हैं जो राजा होता है, राजा का बेटा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, उसको बोलते हैं चिरंजीव भव, लंबी आयु हो। और फिर वो एक कसाई को देखते हैं जो बुरे कार्य में लगा है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि जीवो, हाँ जीवो भी नहीं मरो भी नहीं, क्योंकि वो अगर मैं एक्सप्रेशन बाद में बताऊंगा। और लास्ट में एक वैष्णव को देखते हैं जो प्रीचिंग कर रहे होते हैं, जो हरि नाम प्रचार कर रहे थे, तो उनको बोलते हैं जीवो वा मरो, आप जिंदा रहो या मरो कोई अंतर। तो जो ये आशीर्वाद दे रहे होते हैं उनके एक शिष्य पूछते हैं गुरु महाराज आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया, आपको तो समान दृष्टि होनी चाहिए। तो महाराज जी बोले कि देखो ये ब्रह्मचारी है, बहुत तपस्या कर रहे हैं और कष्टमय जीवन है, लेकिन मरने के बाद भगवान की प्राप्ति हुई, इसलिए मैंने बोला माँ जीव जल्दी मरो जल्दी गोलोक जाओ। मैं नहीं बोल रहा, वैसे कहानी में बताया गया। हमें तो प्रीचिंग की जरूरत है, इसलिए हम ऐसा आशीर्वाद नहीं दे रहे, ले नहीं जाते, जितना हो सके जीना चाहिए। और दूसरा ये जो राजपुत्र है इतना एंजॉय कर रहा है और एंजॉयमेंट में इंद्र तृप्ति में पाप कर रहा है, मरने के बाद बुरी गति है, इसलिए जितना जीवित रहे अच्छा है, क्योंकि मरने के तुरंत बाद उसको नरक जाना होगा। और ये जो कसाई है उसका तो जीने में बहुत खराबी है, वो जी रहे तो लोगों को मार रहा है, जानवरों की हत्या कर रहा है, मरने के बाद तो और बुरा फल है, इसलिए न जीवित रहे न मरे। और जब प्रचार कर रहे हैं वो तो यहाँ भी हरे कृष्णा गा रहे हैं, मरने के बाद भी हरे कृष्णा गा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। एनीवे, तो ये जो हमें हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब धीरे धीरे मृत्यु के करीब आ रहे हैं, उसकी तैयारी करनी है। जैसे एक दो दिन पहले मेरा सो कॉल्ड बर्थडे था, मेरे को पंजाबी बाग टेम्पल हमेशा याद आता है क्योंकि रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और मेरा बर्थडे सेम डे है नवंबर में, है ना। खाली दो तीन साल का अंतर है, मैं इस जेल में पहले आया था 3 साल। तो मेरे को किसी ने मैसेज भेजा यू ना हैप्पी बर्थडे टू यू, के पुराने मित्र ने हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैं सोच रहा था ये मैसेज का मतलब क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू, डेथ इज कमिंग क्लोज टू यू, कि ना मृत्यु करीब आ रही है। लोग गर्व लेते हैं कि मेरा बर्थडे आया, एक बर्थडे केक मिला, इसका मतलब ये भी है कि मृत्यु के हम करीब आ गए। भागवत में कहा गया आयुर हरति वेपुंसा, जो सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक मृत्यु के करीब आ रहे। लेकिन जो भगवान के नाम रूप गुण लीला के गान में लगाए वो हर वर्ष हर दिन भगवत धाम के करीब पहुंच रहे, इसलिए भक्त के लिए बुढ़ापा आए मृत्यु आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब भगवान के और करीब जा रहे। अगर भगवान बोलते हैं नहीं अभी भगवत धाम नहीं जाना है, कुछ और प्यूरिफिकेशन बाकी है, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम भक्त के घर में जन्म मिल जाए। भगत गृहे व्हाट इज दैट, कीट जन्म हऊ यथा तुवा दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म, ब्रह्मा का भी जन्म मिले नहीं चाहिए मुझे अगर अभक्त घर में, और भक्त के घर में जन्म मिलना चाहिए, चाहे वो कीड़े का भी जन्म हो, कुत्ते का भी जन्म। तो एनीवे, तो मैं बता रहा था कि ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा कर रहे थे, उनको कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते थे, क्योंकि कई बार आखिरी समय व्यक्ति की इतनी शक्ति नहीं होती स्वयं से पुस्तक पढ़ सके, तो पढ़ के सुनाते, तो इतने खुश हो गए, आप कृष्ण के महान भक्त बनो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी ने दिया। माधवेंद्रपुरी साधारण साधारण व्यक्ति भी नहीं है, साधारण गुरु भी नहीं है, वो तो भगवान के धाम से कल्पवृक्ष के अवतार है। जो भी हम देखते हैं हमारे मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा होती है, ये माधवेंद्रपुरी ने ये ज्ञान प्रदान किया, माधुर्य रस का ज्ञान, हाइएस्ट लेवल ऑफ लव माधवेंद्रपुरी का। और जब वो वैष्णव वो आशीर्वाद देते हैं कि आप महान भक्त बनो, और उसी के फलस्वरूप उनकी इतनी शुद्धता थी कि स्वयं भगवान उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते। दूसरी और एक भक्त होते हैं, वो भी अच्छे भक्त होते हैं, रामचंद्रपुरी, लेकिन वो माधवेंद्रपुरी का अपराध कर लेते हैं। जब माधवेंद्रपुरी आखिरी दिनों में होते हैं तो वो कृष्ण ना पाए लो मथुरा, वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। तो रामचंद्रपुरी बोले, कृष्ण आप क्यों कृष्णा को याद कर रहे हो मथुरा, आप ब्रह्म पर ध्यान करो, सब जगह पर ब्रह्म है। तब माधवेंद्रपुरी बहुत क्रोधित हो गए, मैं पहले दुखी हूँ, कृष्ण के विरह के कारण दुखी हूँ, और आप इस तरह से बोल के मुझे और पीड़ित कर रहे हो। अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, अगर मैं आपको देखते हुए शरीर त्याग करूँगा तो पता नहीं क्या गति होगी, आप मेरी नज़र से दूर हट जाओ। और क्योंकि रामचंद्रपुरी ने इस तरह गुरु के प्रति अपराध किया, उनका पतन हो गया। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए हम, कि हम गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करें, उनको नाराज नहीं करें। तो यहाँ पर ईश्वरपुरी नम्रता के साथ बोल रहे हैं कि मेरा नाम गोविंद है, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। क्योंकि प्रसंग में आ गया एक घटना है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, ये भी कहानी चैतन्य भागवत में बताई गई है। कि जब चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए, तब वो ईश्वरपुरी से मिले, और ईश्वरपुरी को पहले भी मिल चुके थे नवद्वीप में, लेकिन गया में ईश्वरपुरी से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर का दर्शन कर रहे थे, विष्णुपाद मंदिर, और उस समय ईश्वरपुरी को देखा। ईश्वरपुरी को देखकर उन्होंने कहा कि आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। और ईश्वरपुरी उनका गुणगान कर रहे थे, और अंत में चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों बाद उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। ईश्वरपुरी बोलते हैं, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है। और ईश्वरपुरी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर। एनीवे, तो इसके बाद यहाँ बताया गया कि जब मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी शरीर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ और उनकी पर्सनल सर्विस करो। काशीश्वर आसी बेन सब तीर्थ देखिया, प्रभु आज्ञा मुई आयनु तुमा पदे धाइया। काशीश्वर, ये काशीश्वर कौन है? काशीश्वर भी ईश्वरपुरी के ही शिष्य हैं। तो बता रहे हैं काशीश्वर को भी बोला गया था आने के लिए, लेकिन काशीश्वर सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ पे आएंगे, लेकिन मैंने अपने गुरु के आज्ञा अनुसार आपके चरण कमल पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र आ गए। ये काशीश्वर ये बहुत महान भक्त हैं, और एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु के साथ वो रहते थे, अब इसके बाद उसका प्रसंग आएगा, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जब समाचार मिला कि गोविंद देव प्रकट हो गए, राधा गोविंद देव के डीटीज अप्रकट हो गए थे, रूप गोस्वामी सब जगह ढूंढ रहे थे फिर भी नहीं मिल रहे थे, अंत में उनको एक छोटा ग्वाला बोला, चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ गोविंद देव कहाँ पर है। और वहाँ पर गोविंद देव कहाँ पर थे? गोविंद देव हाँ गोमत टीला, एक जो अभी आधा गोविंद देव का मंदिर है उसके पास में एक छोटा सा पर्वत जैसे, वहाँ पर एक गाय रोज दूध डालती थी, तो उसके नीचे गोविंद देव प्रकट। तो जब गोविंद देव प्रकट हुए तो रूप गोस्वामी ने संदेश भेजा महाप्रभु को, तो महाप्रभु इतने खुश हुए, महाप्रभु काशीश्वर को बोले कि आप जाओ गोविंद देव की सेवा करो। काशीश्वर बोले, प्रभु मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हूँ, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। भगवान बोले नहीं मैं आपके बिना नहीं जा सकता। तो भगवान ने फिर अपने हाथों से एक मूर्ति बना के दी, स्वयं अपनी मूर्ति, इमेजिन चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बना रहे और मूर्ति उनके साथ में दे दी। बोले आप ये विग्रह में मेरे को प्राप्त करो। आपको मालूम है ये विग्रह कहाँ पर है? गोविंद देव मंदिर में, राधा गोविंद जयपुर में। वेरी कुछ कुछ लेडीज बहुत स्पेशल हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक विग्रह है जो धामेश्वर महाप्रभु नवदीप में, जहाँ महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को ड्यूटी दी। ये भगवान कृष्ण की एक ड्यूटी है जो भगवान कृष्ण ने बनाई है। अभी आप सब होके आए वहाँ पर, उडुपी कृष्ण इज कृष्ण ड्यूटी मेड बाय कृष्ण। तो काशीश्वर को भी आना था, लेकिन काशीश्वर थोड़े तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, वो बाद में आएंगे, लेकिन मैं अभी आ गया। नेक्स्ट श्लोक 135। गोसाई कहिला पुरी ईश्वर वात्सल करे मोरे, कृपा करी मोरे ठाई पठाई ल तो मारे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरे गुरु ईश्वर पुरी मुझ पर सदैव पिता जैसे स्नेह करते हैं, जैसे पिता बेटे से स्नेह करता है, से गुरु शिष्य से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अहेतु की कृपा के कारण तुम्हें यहाँ भेजा है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं सोच रहे, ओ मैं तो अच्छा, ईश्वरपुरी ने मेरे को एक असिस्टेंट भेजा, मैं इतना एडवांस डिवोटी हूँ। नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरे गुरु महाराज ने क्यों भेजा आपको? क्योंकि वो मेरे पिता हैं और पिता को बेटे की चिंता होती है, इसलिए मेरे पर कृपा करके तुम्हें भेजा है। अब आज का श्लोक आता है, एता शुनी सार्वभौम प्रभु रे पूछिला, पूरी गोसाई शूद्र सेवा कहत रखिला। एता शुनी, अब यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु रे महाप्रभु को पूछा पूरी गोसाई ईश्वर पुरी शूद्र सेवक कहा त क्यों राखीला रखा। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। ये सुनकर सारम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वर पुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा? तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, काशीश्वर और गोविंद दोनों ही ईश्वरपुरी के सेवक थे। ईश्वरपुरी के तिरुभाव के बाद काशीश्वर भारत के सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, लेकिन गोविंद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले आए। यद्यपि गोविंद शूद्र कुल में जन्मे थे, किंतु ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी, इसलिए निश्चित रूप से ब्राह्मण बन चुका था। यहाँ पर सर्व भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र परिवार का शिष्य क्यों बनाया? स्मृति शास्त्र के अनुसार जो वर्णाश्रम संस्थाओं की व्यवस्था के प्रति आदेश देता है, ब्राह्मण निम्न जातियों के शिष्य नहीं बना सकता। यानी ऐसा बताया गया कि ब्राह्मण का शिष्य ब्राह्मण होता है, या क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सेवक नहीं बनाया जाता। यदि गुरु ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता है तो गुरु भी दूषित हो जाता है। इसलिए सर्व भट्टाचार्य ने पूछा कि ईश्वरपुरी ने तो शूद्र जाति का सेवक क्यों बनाया? चैतन्य महाप्रभु अगले श्लोक में जवाब देंगे। क्या जवाब है? चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा, ये तात्पर्य प्रभुपाद एडवांस में बता रहे हैं, कि उनके गुरु ईश्वरपुरी इतने शक्ति संपन्न थे कि भगवान के जैसे थे। इस तरह ईश्वरपुरी समस्त जगत के गुरु थे। यहाँ पर भगवान शब्द उपयोग किया, कभी कभी प्योर डिवोटी के लिए भगवान बोलते हैं, भगवान नारद, भगवान शिव। ईश्वरपुरी समस्त जगत के गुरु थे, वे संसारिक शासन या नियमों से बद्ध नहीं थे। ईश्वरपुरी जैसे शक्ति संपन्न गुरु जाति पाति का विचार किए बिना किसी को भी अपनी कृपा प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि शक्ति संचारित गुरु कृष्ण तथा अपने स्वयं के गुरु द्वारा अधिकृत होता है, और इसलिए भगवान जैसे अच्छा समझा जाता है। गुरु को भगवान के समान माना जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्र ठाकुर का श्लोक बताते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, अधिकृत गुरु हरि या भगवान के तुल्य है। जैसे भगवान हरि इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, वैसे शक्ति संचारित गुरु भी स्वतंत्र होते हैं। जिस तरह भगवान हरि संसार के नियमों से बद्ध नहीं होते, उसी प्रकार हरि द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भी बद्ध नहीं होता। मतलब गुरु के अंदर भी भगवान की समान पावर है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान भी प्रभावित नहीं होते माया से, सच्चे गुरु भी, क्योंकि भगवान की शरणागति में है इसलिए वो प्रभावित नहीं होते। चैतन्य चरितामृत के अनुसार कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कृष्ण के द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भगवान के नाम की महिमा का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उसे भगवान से अधिकार मिला है। लौकिक जगत में अपने गुरु से अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने गुरु की ओर से कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए गुरु को साक्षात भगवान के ही समान मानना चाहिए। साक्षात हरित्वेन का यही अर्थ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान और आध्यात्मिक गुरु के कार्यों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तो ये जो थोड़ा डिलेमा थोड़ा ये लग रहा है, कैसा क्यों है कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर्व भट्टाचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे ईश्वरपुरी ने गोविंद को स्वीकार किया। वर्णाश्रम के अनुसार उसे ब्राह्मण परिवार होने के कारण ब्राह्मण को ही स्वीकार करना चाहिए। तो जवाब में यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भगवान के जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो सब नियमों से परे होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, हम कहानी सुनते हैं हरिदास ठाकुर जंगल में जप कर रहे हैं बेनापोल में, और वहाँ पर एक रामचंद्र खान नाम के ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो बहुत ईर्ष्या करते हैं। और होता यह कि हरिदास ठाकुर के प्रभाव से सभी व्यक्ति कृष्ण भक्त बन रहे थे, और जहाँ वो प्रवचन करते हैं वहाँ बहुत लोग जा रहे हैं। तो रामचंद्र खान चिंतित हो गए कि मेरे प्रोग्राम में कोई नहीं आ रहा। तो हमारे अंदर भी ऐसी ईर्ष्या होती है नहीं, कि हमको लगता है कि हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा लोग आने चाहिए, मैं ही पतित पावन हूँ, या नहीं, ये अहंकार आ जाता है। मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, लेकिन सच्चे भक्त को अहंकार नहीं आना चाहिए। तो रामचंद्र खान के मन में अहंकार होता है, हालांकि वो भी हिंदू परिवार से थे। वो सोचते थे कि हरिदास को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है। तो उन्होंने प्रयास किया उनको पतन कराने का। और आप जानते हैं कोई ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए सबसे बड़ी बदनामी होती है कि अगर कोई अलग खराब संग कर रहे। तो उन्होंने एक वेश्या को भेजा हरिदास का पतन कराने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर बोले, बस मेरा जब पूरा हो जाए मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। आप कितना डेंजरस सिचुएशन है, अकेले हैं, रात्रि का समय है और सुंदर स्त्री है। तो हरिदास ठाकुर को देखने जाए तो शास्त्र के अनुसार उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए था। नहीं, शास्त्र में कहा गया मात्रा श्वास्रा दुहित्रावा, अपनी स्वयं की माता बहन या बेटी के साथ भी निर्जन स्थान में नहीं रहना चाहिए। विवाहित पत्नी को छोड़कर किसी के साथ निर्जन स्थान में नहीं रहना चाहिए। तो और ये भी आगे क्या बताया, विद्वान सपी कर्षित। या बोलोगे ये इंस्ट्रक्शन तो मूर्खों के लिए होगा, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते। दो तीन दिन पहले मैं वृंदावन टेम्पल में था, शनिवार को मुझे क्लास देना था, तो हम वो प्रसंग चल रहा था कि शिव जी भी मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऑफकोर्स मोहिनी मूर्ति तो माया देवी नहीं है, वो अंतरंग माया है, लेकिन फिर भी शिव जी आकर्षित होते हैं और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में से उदाहरण बताए गए हैं। तो नारद जब हरिदास ठाकुर के सामने ये परीक्षा आई तो उनको छोड़ के चले जाना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन हरिदास ठाकुर रुके वहाँ पे, बोले कोई बात नहीं, आप बस मेरा जप सुनिए, मेरे साथ मंत्र सुनते रहिए और फिर मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, और तीसरे दिन वेश्या माफ़ी मांगने लगी कि मैं तो गलत इरादे से आई थी, आज आपके संग से मैं शुद्ध हो गई, अब मुझे अब अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो हरिदास ठाकुर बोले, यस, मुझे पहले से ही मालूम था आपको किसने भेजा है, वो अज्ञानी रामचंद्र खान ने भेजा, मैं तो जाने वाला था लेकिन इसलिए रुक गया क्योंकि आपका उद्धार करने का। तो हरिदास ठाकुर इतने पावरफुल थे, ऐसे पावरफुल व्यक्ति के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो लिखता है कि उनके लिए नियम विधान नहीं होते। अभी मैं और आप इसकी नकल करें तो हम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हम जो साधारण भक्त हैं, जो भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे कर चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे महापुरुष की नकल नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर कर सकते थे बिना डिस्टर्ब हुए, लेकिन हम नहीं कर सकते। रामानंद राय का एग्जाम्पल है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु की लीला में चार महान भक्त हैं जो चार गुण प्रदर्शित करते हैं। आपने सुना है रामानंद राय सनातन गोस्वामी है ना, क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं वो? रामानंद राय धीरता, कैसे इंद्रियों को वश में करना, और दूसरा उदाहरण क्या है? सर दमोदर। सनातन गोस्वामी नम्रता, और हरिदास ठाकुर की सहनशीलता, और दामोदर पंडित की स्पष्टता। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र को बेचने के जाओ, रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनने जाओ, और वो कथा सुनने जाते हैं तो वो अंदर बिजी होते हैं, बोलते हैं वेट करो, सुबह से शाम तक वेट कर रहे हैं। फिर वो लौटते थे, पूछते हैं कि क्या कर रहे थे? पता रामानंद राय वहाँ पर जो देवदासी हैं, जो भगवान के लिए डांस कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु बोले यस, रामानंद राय ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो रामानंद राय इतने धीर व्यक्ति हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो बहुत बड़े भक्त कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जैसे हरिदास ठाकुर, आप लोग हरिदास ठाकुर हम नकल करना है तो ये भी नकल करो कि 22 मार्केट में पीटे जाने पे कितना जप कर सकेंगे। एक मार्केट में कोई बोल दे तो भी हम बोलेंगे चलो प्रभु जी सर्वधर्मान परित्यज्य, बीड़ बैग त्याग देंगे, डर जग जाए। हरिदास ठाकुर इतने महान थे। और कौन सा उदाहरण है शास्त्र में जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी महान भक्त नियम से परे होते हैं? नारद मुनि, यस वेरी गुड। नारद मुनि जब, आप जानते हैं जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाते हैं तो देवता सोचते हैं कि अभी उनकी पत्नी अकेले है, उस समय गर्भवती है, तो वो सोचते हैं कि इनको ले जाएंगे और इनको मारेंगे नहीं, स्त्री को नहीं मारा था, लेकिन इनके घर में, इनके गर्भ में बालक है। उनको लगता है कि हिरण्यकश्यपु महान असुर है, इनका बेटा तो नेक्स्ट वर्जन होगा, यू नो, हायर दुर्गुणों के साथ। तो प्लान कर रहे थे कि बच्चे को मार देंगे, लेकिन नारद मुनि बीच में आते हैं और बोलते हैं आप जानते नहीं हो, ये जो बालक है महाभागवत भक्त है, आप इसको मार भी नहीं सकते, भगवान के द्वारा रक्षित है। तो फिर वो उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करके अपने अपने लोक में चले जाते। फिर नारद मुनि कयाधु को एक आश्रम में ले जाते हैं, ये स्थान पंढरपुर के पास है महाराष्ट्र में, इसका नाम है नीरा नरसिम्ह, और वहाँ पर नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं 1-to-1 क्लास। तभी ये भी लगता है कि नियम के विरुद्ध लगता है, ये हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए नियम है, लेकिन नारद मुनि इतने एडवांस डिवोटी हैं, वो शरीर के स्तर पर नहीं है, और उनको उपदेश करते हैं। और बाद में प्रहलाद का जन्म होता है, तो प्रहलाद का जो फर्स्ट भागवतम क्लास जो है -5 months में हो गया था, बिफोर बर्थ -5 months गर्भ में सुन रहे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी एक माता जी हैं, वो जब उनके घर में बालक था तो उन्हें पूरा भागवतम पढ़ा। और शायद आपने देखा होगा एक और भी एक एग्जाम्पल है, राधा गोविंद के शिष्य थे जो बच्चा घर में होने पर वो भागवत पढ़ रहे थे, और बच्चा जन्म होने के बाद बहुत कृष्ण नाम में बहुत आसक्त। देखा आपने छोटा सा एक क्लिपिंग आया था, वो हरे कृष्णा बोलने पर रोना बंद करता था। You heard that small clipping? तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। जब भी स्थिति आती है माताओं के लिए कि बच्चा गर्भ में है तो शास्त्र पढ़ना, ऑफकोर्स रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन स्पेशली ऐसे नहीं कि आप ब्रह्मचारी बने प्रभु जी मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है हर एक को पढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे को राधाकांत रू बता रहे थे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बहुत जोर दे रहे थे इस बात पर कि कम से कम थोड़ा एक पेज दो पेज रोज पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स। प्रभुपाद जी तो बोलते थे, एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद व्हाट इज तपस्या, तपस्या क्या है? तो प्रभुपाद जी बोले तपस्या मतलब मेरे पुस्तकों को 6 घंटे पढ़ना रोज। तो आपको तो महाराज जी बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना? प्रभुपाद बोले 6 घंटे नहीं, वे तो नारद मुनि उपदेश करते हैं, प्रहलाद का जन्म होता है, और कयाधु वो भूल जाते हैं क्या सुना है, लेकिन प्रहलाद महाराज को याद रहते हैं। प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त हुए, ऑफकोर्स वो तो पहले से भक्त हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि का गर्भ में ही संग मिला। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर शास्त्र के नियम जो हैं किसी भक्त के लिए लागू नहीं होते। तेजोवरम न दोषयेत, जो बहुत तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे सूर्य है, अभी कोई गंदा स्थान है, किसी ने मलमूत्र किया है, वो तेजनीय स्थान है, जब सूर्य की किरण पड़ते हैं उसके ऊपर तो वो स्थान को शुद्ध बना देते हैं। लेकिन और कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा संपर्क में आने से, लेकिन सूर्य इतने पावरफुल है कि उसको शुद्ध बना देता है। चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु का बताया गया, नित्यानंद यदि सूर्य पानी जाए, जहाँ पे शराब पी के दुकान में भी अगर नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं तो हमें विश्वास है वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो दूसरे किसी कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं ना। तो नित्यानंद प्रभु की कहानी है कि नित्यानंद प्रभु तो चोरों को भी भक्त बनाते हैं। आपने सुनी है कहानी, एक बार नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में थे, एक ब्राह्मण के घर में थे, और अचानक एक चोरों का डाकों का गिरोह आया। नित्यानंद प्रभु का वेश बड़ा विचित्र है, उनके पास गोल्डन रिंग्स हैं, हरे कृष्ण। इमेजिन करिए कोई प्रचारक लेक्चर देने आता है, उसके पास डायमंड रूबीज के चार चार रिंग्स हैं, हाँ, गले में सोने का माला है, हरी बोल कौन से सेंटर से आए हो भैया बड़ा विचित्र वेश। नित्यानंद प्रभु इस आराम से वहाँ बैठे प्रसाद ले रहे, अरे चोरों का गिरोह था, उनका उनका मन आकर्षित हुआ नित्यानंद के चरणों के प्रति, किस लिए चोरी करने के लिए, है ना, ये ना के न प्रकार है ना, उनका मन नित्यानंद के चरणों में आकर्षित। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम चोरी करेंगे, लेकिन चोरी करने से पहले पता लगाना होगा कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अटैक करना है तो इसमें करना चाहिए, कोई व्यक्ति सो रहा हो या कुछ कॉशियस नहीं हो। तो उन्होंने एक पैसेंजर को भेजा पता लगाने के लिए, तो देखा नित्यानंद प्रभु तो प्रसाद खा रहे हैं, बहुत अच्छी फीस्ट कर रहे हैं। तो डाकू ने सोचा ठीक है हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो रात को विश्राम करेंगे। इसलिए वो अगले दिन प्लान कर रहे थे कि हम रात को जाएंगे, और हुआ ये कि सबके सबको नींद आ गई, हरे कृष्ण, और वो सब तलवार लेके रेडी बैठे थे, और वो दिखाना नहीं चाहते थे कि हम चोर हैं, वो रात को अटैक करना चाहते। लेकिन हुआ ये कि अचानक मुर्गी की आवाज़ आई और सब उठ गए, और देखा सूर्योदय हो गया, और उसको बढ़ा, क्योंकि समाज में लोग उनको जानते नहीं थे वो चोर हैं, सब भागे अपने अस्त्रों को छिपाने के लिए। एक बोला अरे तुम क्यों सो गए, बोला लेकिन मेरे से पहले तुम सो गए, और फिर बोले कोई बात नहीं हम फिर से अटैक करेंगे प्लान करके। और सेकेंड टाइम वो अटैक करने के लिए गए तो पता लगाया तो नित्यानंद प्रभु के घर के पास जहाँ वो ठहरे थे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बॉडी गार्ड्स हैं, करीब 12 फीट लंबे, और सबके माथे पे तिलक है, चंदन है, और हाथ में तलवार है, मतलब सिक्योरिटी। और वो जोर से बोल रहे हैं हरी हरी, जोर से बोल रहे हैं हरी 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 हरी, जस्ट चैंट हरी, नो मोर वरी, है ना। तो वो ये लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स, कोई बोला अरे कौन है ये, लगता है नित्यानंद प्रभु के किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, ये हो सकता है नित्यानंद प्रभु स्वयं महान हो, उनके बॉडी गार्ड्स हैं। बोले कोई बात नहीं, तो इस बार भी वो चुरा नहीं सके। और फिर इनको फिर अगले दिन उन्होंने सोचा कि हम असफल क्यों हो रहे हैं बार बार, क्योंकि हम दुर्गा देवी का आशीर्वाद नहीं ले रहे। कोई भी शुभ कार्य मतलब चोरी डाका करने से पहले दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेना चाहिए, सबका अपना अपना डेफिनेशन है शुभ कर्मों का। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम दुर्गा देवी को ऑफरिंग करेंगे और सब, यू नो, जो भी चीज़ें दुर्गा देवी को की जाती। और अगले दिन फिर वो तैयार हुए, इस बार वो बिल्कुल सतर्क थे कि अभी जाना ही है। उसमें हुआ ये कि रातों रात अचानक सब दौड़े नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण करने, और सबकी आंखें की दृष्टि चली गई, सब अंधे हो गए, और बहुत जोर से तूफान आ गया, और अंधेरा जैसे आज सवेरे कोहरा था उससे कई गुना ज़्यादा कोहरा, और ओले पड़ने लगे, और सारे के सारे चोर गिर पड़े, कोई झाड़ियों में गिर पड़ा, कोई किसी को मच्छर काटने लगे, किसी को जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कीड़ा होता है ना जो चिपक जाता है, लीच टाइप है ना, कीड़े, हाँ जो वो कीड़ा चिपक गया और काटने लगा, और सारे चोर एकदम परेशान है, उसमें देख भी नहीं पा रहे कहाँ पे। उस समय चोरों का जो लीडर था उसको समझ में आया कि ये नित्यानंद प्रभु ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये क्या हो रहा है? पहली बार हम अटैक करने गए तो हमको नींद आ गई, दूसरी बार गए तो बॉडी गार्ड दिखाए, तीसरी बार हम अंधे हो गए, ये कौन है? ये नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं उनकी शरण में आना चाहता हूँ। नित्यानंदम शरणम प्रपद्ये, नित्यानंद शरणम प्रपद्ये, मैं नित्यानंद प्रभु की शरण को ग्रहण करता हूँ। हे नित्यानंद प्रभु, मेरे अपराधों को माफ करो, हम इस तरह प्रार्थना मन ही मन कर रहे थे। अचानक नित्यानंद प्रभु कृपा से सबके सब चोरों की दृष्टि वापस आ गई, सब मच्छर ऑल आउट हो गए, सब कीड़े चले गए, और वो चोर पहले तो निकले, पहले दौड़ते हुए जाके उन्होंने अपने अस्त्रों को छिपाया, और फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने ऐसे दिखाया कि उनको पता ही नहीं है, वो बोले क्या हुआ, आपने कुछ अद्भुत चीज़ देखी, आप यहाँ किस लिए आए हो? तब वो चोरों ने सारी घटनाएं बताई कि कैसे हम आपको अटैक करने आए थे, पहली बार क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमने इतने सारे लोगों को मारा है, इतने मर्डर्स किए हैं, अब हमारे लिए एक ही प्रायश्चित है, हम आत्महत्या करना चाहते हैं, परमिशन दो भी। नित्यानंद प्रभु बोले कोई बात नहीं, आपके सारे अपराध क्षमा हो गए, बस आप कृष्ण का नाम गाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आपका उद्धार हो गया, अब सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दो और हरि का नाम लो और ये कृष्ण का नाम प्रचार सबको करो। तो वो चोर डाकू वैष्णव बन गए। आपने सुनी थी ना ये कहानी, कितने भक्तों ने सुनी थी, कितने नहीं सुनी थी, नहीं आपका सेंटर बहुत पायस सेंटर है, इसलिए ये कहानी हमारे जैसे भक्तों के लिए शुद्धिकरण के लिए। और फिर वो चोर प्रचारक बन गए, और स्पेशली किसको प्रचार करते हो, चोरों को, TDSKP ट्रेवलिंग डेकोइट संकीर्तन पार्टी वो सारे जगह पे जितने भी चोर होते सबका उद्धार कर देते। अभी कल मैं वो कथा पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में भी एक कहानी आती है, कुछ चोर भक्त बन जाते हैं, आपको मालूम है कौन सी कहानी है चैतन्य चरितामृत में? पठान सोल्जर, यस, आप जाके सर्च करेंगे ना वेदाभ्यास में, थीव्स डेकोइट्स इन गौरलीला तो वहाँ पे एक बार चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन में होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य के एक और असिस्टेंट होते हैं, और उधर एक लोकल ब्राह्मण मथुरा में भगवान के साथ आ जाते हैं, सनोडिया ब्राह्मण, और एक राजपूत होते हैं जो गंग यमुना के उस पार से आके इसको मतलब कृष्ण को महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं, तो चार डिवोटीज के साथ होते हैं। और महाप्रभु कई बार यमुना जी में गिर जाते तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत परेशान हो गए, क्या करें कि बार बार भगवान कभी गिर जाते हैं, कुछ हो सकता है, अभी तो मैंने बचा दिया, और लोग सब साधारण व्यक्ति आकर निवेदन करते हैं भगवान से, बलभद्र से, भगवान को मेरे घर बुलाओ प्रसाद के लिए, मेरे घर बुलाओ, और एक दिन में 10-15 इन्विटेशन आते हैं और एक ही स्वीकार किया जा सकता है। तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं सानुड्य ब्राह्मण से क्या किया जाए, सानुड्य ब्राह्मण बोलते हैं देखो भगवान को आके अभी 2 महीने हो गए, अभी माघ महीना हो रहा है, मकर संक्रांति का समय आ रहा है, हमें प्रयाग जाना चाहिए, तो ये बहाना करो प्रयाग जाने का और महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले चलो, हरे कृष्ण। तो उन्होंने फिर महाप्रभु को बताया कि देखो प्रभु, लोक आए से तुम्हें बिले बारे, आपको मिलने आते हैं लोग, तो माना पाए लोग मोरा माथा खाए और आप तो अपने भजन में निकल जाते। महाप्रभु क्या करते, जहाँ पे रहते थे ना अक्रूर घाट, वहाँ जप नहीं करते थे, अक्रूर घाट से 5 किलोमीटर दूर जाते जप करने, कहाँ पे जाते, इमली तला देखा आपने, ये बहुत सुंदर स्थान है। एक्चुअली जब 30 साल पहले जब मैं पहली बार वृंदावन गया था, उस समय वो पेड़ की आत्मा, पेड़ अभी भी था, अभी तो पेड़ चला गया, दूसरा पेड़ आ गया, लेकिन वो इमली तला, वो पेड़ जो महाप्रभु के द्वापर युग के समय का पेड़, जब एक बार भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला से अप्रकट होके वहाँ पर एक बार अचानक वहाँ बैठे ध्यान कर रहे थे, राधा रानी खोजते हुए आए तो देखा भगवान कृष्ण एकदम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में, सुनहरे रूप में, तो राधा रानी ने पूछा कि ये कौन सा रूप है, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये मेरे कलयुग में मैं ये रूप धारण करूँगा, मैं आपके प्रेम को और आपके भाव को अंगीकार करके आपके प्रेम का आस्वादन करने के लिए आऊँगा। तो उस जगह का नाम इमली तला है। तो चैतन्य महाप्रभु जप करने वहाँ जाते थे, क्योंकि मेरा भी अनुभव है कि जब अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो जहाँ पर आप रेगुलर रहते हो उधर से थोड़ा दूर जाना चाहिए रेगुलर ड्यूटी से, रोज नहीं महीने में एक दिन या हफ्ते में महीने में दो दिन या एक दिन जितना भी संभव हो एक दिन पूरा भगवान के नाम के लिए रखना चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन, मतलब सुबह से एटलीस्ट दोपहर तक हाफ डे एटलीस्ट। इससे क्या होगा कि हमारे को स्पिरिचुअल शक्ति मिलेगी जिससे हम जो अपने जो भी टेस्ट आते हैं माया के उसको पार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बताने लगे आप तो चले जाते हो लोग मेरा माथा खाते हैं और अभी अभी हमें प्रयाग जाना चाहिए, अभी माघ मेला का समय आ रहा है और उस समय स्नान, जैसे आज जो है आज अवनी अमावस्या है, आज एस्टिमेट है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करने वाले, 3 करोड़, हरे कृष्ण, इमेजिन 30 मिलियन पीपल, हम भी मानसिक रूप से स्नान कर सकते हैं हरे कृष्णा मंत्र में सारे स्नान आ जाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलभद्र भट्टाचार्य भगवान को बोले अभी हमें प्रयाग जाना चाहिए। ये महाप्रभु ने सुना तो उनको थोड़ा दुख लगा क्योंकि वृंदावन छोड़ने को बोल रहे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में बताया, बलभद्र आप मुझे वृंदावन लेकर आए और मुझे दर्शन कराए, ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, अब आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, जहाँ आप मुझे ले जाओगे वहीं पर मैं जाऊँगा। तो महाप्रभु के मूड को देख के बलभद्र बोले ठीक है हम लोग महावन गोकुल होके फिर जाएंगे। तो गोकुल गए और उधर पास में किसी ग्वाले ने एक बंसी बजाई तो बंसी की आवाज़ सुन के महाप्रभु बेहोश हो गए। और उधर कुछ पठान सैनिक आए जो घोड़े के ऊपर थे एकदम पावरफुल वो, और उन्होंने जब देखा कि 4 व्यक्ति बैठे हैं और 1 व्यक्ति बेहोश हो गया तो रुक गए। तुरंत उन्होंने इनको बोला पकड़ लो ये चारों को, ये 4 धूर्त हैं, इन्होंने ये जो बेहोश हुए व्यक्ति है इसके पास बहुत सोना चांदी रहा होगा और इन्होंने धतूरा खिला के इसको बेहोश कर दिया और सब कुछ चुराने का इरादा है। क्योंकि आत्मवत मन्यते जगत, क्योंकि वो खुद चोर थे तो उनको लग रहा सभी चोर है, तो उन्होंने तुरंत जो है उनको गिरफ्तार कर दिया। कुछ ही क्षणों में सब बंधन में थे। तो जो बंगाल से थे बलभद्र भट्टाचार्य असिस्टेंट वो तो थर थर कांपने लग गए क्योंकि लोकल व्यक्ति को डर नहीं लगता, बाहर से थोड़ा सा आता है। तो लोकल व्यक्ति थे राजपूत कृष्णदास सानोडिया ब्राह्मण। तो सानोडिया ब्राह्मण बोले देखो आपके राजा को मैं भी जानता हूँ और आपके कई अधिकारियों को जानता हूँ, हमारा कोई दोष नहीं। तो ये भी एक तरीका है, जैसे आपको कोई कहता तो प्रोजी मैं जानता हूँ DSP को जानता हूँ, यू ना, तो पहचान से लाभ हो सकता है ना, चाहे हो या नहीं हो कभी बताना भी हेल्पफुल हो सकता है, कईयों के इसमें होता भी है। तो भी वो माने नहीं, बोले नहीं आप सब चोर हो, आपने सन्यासी का सब कुछ चुरा लिया है। तब फिर राजपूत कृष्णदास वो तो बहुत बोले देखो मैं भी साधारण व्यक्ति नहीं हूं, 200 सैनिक हैं मेरे इशारे पे काम करने वाले और मेरे पास 100 तोप हैं कैनन्स, अगर मैंने 1 इशारा किया सब आएंगे, घोड़ा पीड़ा लूटी तोमा सब मारी खाए, तुम्हारा घोड़ा पीड़ा सब लूट लेंगे और भट्टापाड़ा हमी ना ही, हम चोर नहीं है तुम चोर हो। तब ये सुन के वो जो सैनिक थे वो थोड़े डर गए, है ना, इसका भी फर्क पड़ता है कि अगर आप डर दिखाओ तो लोग और डराते हैं, तो कई बार बहादुरी से बोलना ये ना वो लाभदायक होता है। तो वो थोड़ा डर गए। इतने में महाप्रभु को होश आ गया और होश आने के बाद जोर से बोले हरी 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 हरी, और तुरंत महाप्रभु इतनी जोर से हरी बोले कि ऐसा मुसलमानों को ऐसा लगा कि कोई वज्रपात हो गया, थंडरबोल्ट गिर गया। तुरंत उन्होंने 4 डिवोटीज को बंधन से मुक्त कर दिया। तो महाप्रभु होश में आके देखने लगे क्या हो। तो फिर वो चोर बोले ये 4 लोगों ने आपका पैसा चुरा लिया, धतूरा खिलाया, हम आपको बचाने के लिए आए। तो महाप्रभु बोले चोर ये 4 तो मेरे साथी हैं और मेरे पास कुछ है ही नहीं, चुराएंगे क्या वो। और फिर वो सबको समझ में आया उनकी गलती। तो उनमें से जो लीडर था एक, मतलब कहते एक ग्रुप था, वो ग्रुप में एक राजा का बेटा था और जो लीडर था जैसे जो स्पिरिचुअल गाइड उसका नाम था विजुली खान। तो विजुली खान जो है वो पीर था, उसने जैसे साधु मतलब मुस्लिम सेंट के कपड़े पहने थे, वो भगवान से डिस्कस करने लगा कुरान के आधार पर कि भगवान क्या होते हैं, निर्विशेषवाद, इम्पर्सनल, गॉड इज इम्पर्सनल, भगवान का रूप नहीं है, आकार नहीं है। और जो जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था महाप्रभु ने उसको पराजित कर दिया और कुरान के आधार पर सिद्ध किया कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनका श्याम रूप है, भगवान श्याम सुंदर है। और फिर उनसे पूछा आपका क्या ओपिनियन है, बोले आप जो बोल रहे सत्य है, हमारे लोग जो हैं वो तो शास्त्र को जानते ही नहीं हैं तो क्या समझाएंगे, हालांकि कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान का अंदरूनी अर्थ नहीं समझ पाते। फिर महाप्रभु ने बताया कुरान में बताया गया कि भगवान एक व्यक्ति है, उनकी सेवा करनी चाहिए, कर्मयोग ज्ञान योग भी दिया गया कुरान में, लेकिन अंत में बताया गया भक्ति योग ही श्रेष्ठ है और सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का रचना पालन नाश करने वाले वही भगवान है। तो बिजली खान भगवान के शरण में आ गए, भगवान को दीक्षा दे दी, उसका नाम हो गया रामदास। इसके बाद वो जो राजकुमार था, वो युवक था, वो भी भगवान के चरणों में आ गया, बोला प्रभु मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, हमें भी क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, बस आप हरि का नाम लो, आप बस कहो हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके सारे पाप दूर हो गए हरि नाम लेने से। और फिर वो भी भगवान की शरण में आ गए और ये पूरे जो डेकोइट पार्टी थी ये प्रचारक बन गए, स्पेशली प्रचार कर रहे थे महाप्रभु के बारे में कि महाप्रभु भगवान है। ये और एक एग्जाम्पल है ट्रेवलिंग डेकोइट पार्टी के। एनीवे समय हो गया, कंक्लूजन में हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब डिस्कस कर रहे हैं सरम भट्टाचार्य के साथ, तो सरम भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि कैसे उन्होंने शूद्र को सेवक बनाया। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये तो वर्णाश्रम है, लेकिन जब कोई वैष्णव बन जाता है तो इन सब से परे हो जाते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक सभा में गए थे जहाँ पर चर्चा हो रही थी कि कौन महान है, ब्राह्मण या वैष्णव। आपने सुना इसके बारे में, मेदिनीपुर में एक डिस्कशन हो रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था लेकिन उन्होंने अपने बेटे को भेजा, तो बहुत सारे स्मार्ट ब्राह्मण थे जो हम ब्राह्मण हैं, ये देखो हमारा धागा है ब्राह्मण का, हम सत्यवादी हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब गए, वो तो महान वैष्णव है, वैष्णव धर्म का प्रचार, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान करना शुरू किया, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चाहे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, भगवान ब्राह्मणों को कितना लाइक करते हैं, जब घी से बने हुए पकवान ब्राह्मण के मुंह में जाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब सुन के ब्राह्मणों को लगा कि ये तो हमारे साइड में है, फिर उन्होंने बताना शुरू किया एक्चुअल ब्राह्मण कौन है, जो परम सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है। तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचे, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र ले रहा है उसने ऑलरेडी ब्राह्मण से ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, वो चंडाल परिवार से भी हो, अहो बच बचतो गरियन यज्जिवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, जिससे भगवान का नाम प्रकट हो रहा है वो तो सबसे ऊंचे है। हरिदास ठाकुर का उदाहरण है, जब एक सभा में श्राद्ध सेरेमनी में सब ब्राह्मणों को भोजन दिया जा रहा था तो अद्वैत आचार्य ने प्रथम भोजन किसको दिया, हरिदास ठाकुर। हरिदास बहुत लज्जित हो गए, प्रभु मैं अब क्या कर रहे, अद्वैत आचार्य बोले आप हर क्षण सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, आप हर चरण संगम में भी स्नान कर रहे हैं क्योंकि आप हरे कृष्ण गा रहे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने फिर सब को पराजित कर दिया, कई स्मार्त ब्राह्मण के शंकाएं थी, चैलेंजेस कर रहे थे, तो भक्ति ठाकुर ने सिद्ध कर दिया कि वैष्णव का मतलब क्या है और कैसे वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचे। और इतना ज्यादा भीड़ हो गई, सब लोग उनके चरण की धूल को लेने के लिए भागने लगे, एक स्टैम्पेड और लोग गिर रहे दूसरे पे, तो पुलिस ने उन सबको रोका, फिर उनके चरण को एक बकेट में धो के पूरा बकेट चरणामृत सबको बांटा गया और ये सब परम वैष्णव के चरणामृत को पान कर सके। तो वैसे रामानंद राय शूद्र परिवार से थे और वो गृहस्थ हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे ज्ञान लेने जा रहे हैं गंगोदावरी के किनारे। आपने देखा ये स्थान कोवूर, गोदावरी नदी के किनारे विशाखापट्टनम के राजमुंड्री के पास में, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, और रामानंद राय जवाब दे रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है, केव शूद्र केव न्यासी केव विप्र केव न्यासी शूद्र के न है जय कृष्ण तत्व वेती से, जो कृष्ण के भक्त है जो कृष्ण ज्ञान जानते हैं वही गुरु बनने लायक है। तो हमें हमारा कितना सौभाग्य, हम प्रभुपाद जैसे गुरु से जुड़े हुए हैं, जैसे हम ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वर्णाश्रम के, इससे भी ऊपर वैष्णव धर्म है। और वैष्णव धर्म का कंक्लूजन है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर। आज जब मौनी अमावस्या के दिन कितना 3 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, अभी हम तो भगवान के अरेंजमेंट से यहाँ पर हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं ये सोचते हुए कि यही परम पवित्र स्नान है। यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती है, वहीं पर संगम है, और वहीं पर हम भगवान को याद करके शुद्ध हो सकते हैं। और प्रार्थना करें राधिका रमण से कि हम इसी जन्म में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकें और उनके चरणों को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई कमेंट्स या प्रश्न, कमेंट्स किसी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु। काशीश्वर यात्राओं पे जाते हैं, मैं सोच ही रहा था कोई प्रश्न नहीं पूछे क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि गोविंद को पर्सनल सर्वेंट की सेवा अर्जेंट थी, मतलब उनको निजी सेवक कहता है। काशीश्वर जो है वो भी सेवक थे, लेकिन उनकी सेवा थी जब महाप्रभु जब भी जाते कहीं पर तो सिक्योरिटी जैसे था, कोई उनके पास उनको डिस्टर्ब नहीं करे। गोविंद की सेवा से मैं अर्जेंट थी। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई सेवा कर रहे होते हैं और दूसरा ऑर्डर आता है कि ये भी करो तुरंत, तो तुरंत जाना चाहिए। कभी कभी आता है कि आपको दूसरी सेवा करनी है लेकिन इमीडिएट नहीं, थोड़े समय बाद भी कर सकते हैं, है ना। तो काशीश्वर के केस में, हालांकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भी भेजा गया है लेकिन थोड़े समय बाद भी पहुँचते हैं। तो इसके बाद के प्रसंग में आता है कि फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं सारो भट्टाचार्य से, ईश्वरपुरी के सेवक हैं गोविंद जो मेरे गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, वो तो मेरे लिए पूजनीय है। ये गुरु की सेवा कर रहे हैं वो भी गुरु के समान है, उसको मैं अपना असिस्टेंट कैसे बना सकता हूँ, सेवक कैसे बना सकता हूँ। तो सर्वभट्टाचार्य क्या जवाब देते हैं? सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु आपके गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने आज्ञा दी है आपके गुरु भाई को कि आपका सर्वेंट बनने के लिए, तो आपको ये स्वीकार करना होगा। उदाहरण देते हैं परशुराम, है ना। परशुराम जब उनके पिताजी आज्ञा देते हैं कि आप अपनी माता और भाई को मार डालो, तो आज्ञा पालन कर देते हैं। और आज्ञा पालन करने के बाद वो पूछते हैं उनसे कि अपने आज्ञा पालन के आपको क्या वरदान चाहिए? तो परशुराम जी बोलते हैं मेरे को वरदान दो कि ये सब जो मर गए जीवित हो जाएं, उनको याद नहीं रहे कि मैंने मारा था। तो दैट एग्जाम्पल इज गिवन इसके बाद के श्लोक में। ठीक है, यू लाइक टू से समथिंग? यस प्रभु। जय हो जय हो। तिहार जेल में प्रभु जी बता रहे हैं कि कैदी था उसको मुक्त किया गया, वो भी वैष्णव बन गया। जय हो। पंजाबी भक्त कॉन्टेक्ट मैन से, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भी भक्त भक्त बन जाऊंगा। यस प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? यस, लास्ट क्वेश्चन टाइम।
नीचे कुल के मतलब लोगों को अपना सेवक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जैसे कि बताते हैं वर्णाश्रम में जो 4 कैटेगरी है, तो सबसे लास्ट कैटेगरी है शूद्र कैटेगरी, सेवक तो वहाँ से ही आते हैं, तो फिर मतलब ये फिर गलत कैसे?
मुरली कृष्ण प्रभु जी आंसर करेंगे आपके प्रश्नों को। दीजिए उनको माइक। आपको कोई सेवा भी करना चाहिए ना, लेक्चर के खाली सुनना नहीं है, बोलना भी चाहिए। दीजिए माइक प्रभु जी। नहीं ऐसे अभी मैं आज्ञा दे रहा हूँ आपको।
मेरी अंडरस्टैंडिंग है ईश्वरपुरी एक मतलब सन्यासी हैं, तो इसलिए ब्राह्मण कुल में इसलिए ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, और जो शूद्र हैं वो फिजिकल लेबर इत्यादि वैश्यों शूद्रों के उनके करते थे, और नॉर्मली ब्राह्मण गुरु के सेवक ब्राह्मण ही मतलब हुआ करते थे। एज पर जैसे महाप्रभु भी जब ट्रैवल करते थे तो किसी ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाते थे बेसिकली, क्योंकि उनके घर में शालिग्राम पूजा वगैरह, शूद्र उतने क्लीन नहीं होंगे उस सेंस के अंदर। तो देर पर उस समय का जो कल्चर है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो यही था कि एक ब्राह्मण और परमहंस वैष्णव जो ईश्वरपुरी, तो उनके सेवक नॉर्मली वुड कम फ्रॉम ब्राह्मण क्लास, खास पर्सनल सर्वेंट जो करने की सेवा, जो निजी सेवा है।
साधु साधु। और कोई प्रश्न है किसी को या कमेंट? थैंक यू वेरी मच। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभी मुझे यहाँ 12 बजे की फ्लाइट से हैदराबाद और फिर अहोबिलम जाना है, जहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। आप प्रार्थना करिए कि मैं वहाँ पर 7th कैंटो मुझे लेक्चर देने, 7वें स्कंद पे मैं प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेम्पल, यहाँ का साधना का स्टैंडर्ड और सिंसियरिटी भक्तों की। मैं भी यहाँ के बाकी जगह पे जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, और यहाँ आने के बाद फिर मेरी बैटरी भी चार्ज हो जाती। थैंक यू वेरी मच। जय श्री प्रभुपाद की। जय।